हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अंबिका का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया था, वो पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई थी। सुबह से ही उसका मन बेचैन था, इसकी वजह वेदांश था। वेदांश पिछली रात देर रात को अचानक घर से निकल गया था। उसने ना तो बताया था कि वो कहाँ जा रहा है और न ही वो अब तक वापस आया था। अंबिका ने उसकी राह देखी, लेकिन वो नहीं लौटा। अगली सुबह वो पूजा के लिए भी नहीं आया। इससे अंबिका और ज्यादा परेशान हो गई। कल रात उनकी बात हुई थी, उसे बीच में ही फोन आ गया था। वेदांश जिस तरह अचानक जल्दबाजी में वहां से निकल गया था, अंबिका को अभी भी वो सब कुछ याद था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो कहाँ गया और कब तक वापस आएगा। अंबिका को उसका चेहरा ध्यान आ रहा था, जिस तरह से वो अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा था और अंबिका के मन के शक को दूर कर रहा था। वेदांश के बारे में याद करते हुए अंबिका ने अपने मन में कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी बातों पर भरोसा करने को दिल करता है। जिस तरह से वो सब कुछ बोल रहा था और सफाई दे रहा था, इसका मतलब उसे भी इस रिश्ते की फिक्र है। लेकिन कहाँ चला गया और अब तक वापस नहीं आया? मेरे पास तो फोन भी नहीं है जो मैं उसे कॉल कर लूँ। आज दुर्गा अष्टमी और नवमी की पूजा थी, जो उनके घर में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती थी। घर में पूजा के बाद प्रसाद का वितरण, कन्याओं का पूजन और घर के सभी लोग इस खास दिन पर एक साथ बैठते थे। वेदांश की माँ ने अंबिका को बताया था कि हर साल वो, मिशिका और उनके पति ही इस पूजा में शामिल होते थे। वेदांश कभी भी पूजा के लिए घर पर नहीं होता था, लेकिन फिर भी आज वेदांश के न होने से अंबिका के दिल में एक खालीपन सा महसूस हो रहा था। वो हर समय यही सोच रही थी कि आखिर वेदांश कहाँ है और क्यों वो इस तरह बिना बताए गायब हो गया। अंबिका ने जैसे तैसे खुद को पूजा की तैयारी में बिजी कर लिया। सास ने पूजा की सामग्री तैयार की और घर को सजाने में मदद की, लेकिन दोनों के मन में वेदांश की गैर मौजूदगी का असर साफ नजर आ रहा था। सुनिधि जी ने एक दो बार अंबिका से पूछा भी, बेटा, वेदांश ने कुछ बताया था क्या? कहीं काम के सिलसिले में तो नहीं गया? हो सकता है कोई जरूरी काम हो उसे। नहीं आंटी, अंबिका ने जवाब दिया, कल रात जब वो यहाँ से गया तब उसने कुछ भी नहीं बताया। बस इतना ही कहा था कि उनका जाना जरूरी है। कहाँ जा रहे हैं और कब तक आएंगे, ये कुछ भी बताना उसने मुझे जरूरी नहीं समझा। सुनिधि जी ने धीरे से अंबिका के कंधे पर हाथ रखा, उसकी फिक्र मत कर, वो ठीक होगा, शायद कोई जरूरी काम आ गया हो। अंबिका ने धीरे से सहमति में अपना सिर हिलाया, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। उसने सुनिधि जी से कहा, माँ जी, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकती हूँ? आपको पता है मेरे पास फ़ोन नहीं है और मैं एक बार वेदांश को फ़ोन कॉल करके देखती हूँ। इसके बाद मुझे अपने भाई अक्षय से भी बात करनी है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अंबिका की बात सुनते ही सुनिधि जी ने तुरंत अपना फ़ोन उसे दिया। अंबिका ने उनका मोबाइल फ़ोन अपने हाथ में ले लिया और सोचने लगी कि पहले किसका नंबर डायल करे, वेदांश का या फिर अक्षय का। तभी सुनिधि जी ने उसे समझाते हुए कहा, अगर तुम वेदांश के पास फ़ोन करने का सोच रही हो तो मैं तुम्हें पहले बता दूं, कोई भी फ़ायदा नहीं है। वो मेरा नंबर देखकर कभी भी फ़ोन कॉल रिसीव नहीं करेगा। मेरी उससे बात ही नहीं होती है और सामने से भी तुमने तो देखा ही है। इस बात पर अंबिका ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे पता है, ठीक है, मैं अक्षय के पास फ़ोन कर लेती हूँ। अंबिका को वेदांश की फ़िक्र तो हो रही थी, लेकिन काफ़ी दिनों से उसके अपने भाई अक्षय से बात भी नहीं हुई थी। उसे अपने घर वालों की भी याद आ रही थी, इसलिए उसने अक्षय का नंबर डायल किया। मोबाइल फ़ोन रिंग हो रहा था, लेकिन अक्षय ने कॉल रिसीव नहीं की। अक्षय, उठाओ फ़ोन, कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हैं? मुझे देविका का नंबर भी याद नहीं है, अंबिका ने झुंझलाते हुए कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो और भी परेशान हो गई। एक दो बार और ट्राई करने के बाद उसने सुनिधि जी का फ़ोन उन्हें वापस कर दिया और कहा, चलिए हम पूजा कर लेते हैं। वो दोनों सास बहू पूजा करने के लिए साथ में चली गईं। अंबिका अभी भी वेदांश के वापस लौटने का इंतज़ार कर रही थी। उन दोनों ने अपना व्रत खत्म किया और पूजा होने के बाद सारा काम निपटाने लगीं। ये दिन भी बीतने को आया था, लेकिन अब तक वेदांश का कोई अता पता नहीं था और ना ही उसकी कोई खबर आई थी। अंबिका को भी समझ नहीं आ रहा था कि किससे वो उसके बारे में पूछें। शाम ढलने लगी थी और अंबिका के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अपनी सास के साथ मिलकर उसने पूजा की सारी विधि पूरी कर ली थी, लेकिन वेदांश की गैर मौजूदगी ने हर चीज का मजा किरकिरा कर दिया था। घर में अब बस वही दोनों थीं और माहौल में अजीब सा सन्नाटा पसला हुआ था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अंबिका का दिल जोर से धड़कने लगा। वो तेजी से दरवाजे की ओर भागी। नौकर के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही वहां जाकर अंबिका ने खुद दरवाजा खोला। वेदांश सामने दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा थका हुआ था। उसके कपड़े भी बिखरे हुए थे और उसकी चाल धीमी थी। अंबिका उससे पूछना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन उसके हालात देखकर अंबिका ने बिना कुछ कहे पहले उसे अंदर आने दिया। अंबिका ने उसके अंदर आने के बाद उससे पूछा, वेदांश तुम कहाँ थे? अंबिका ने सवाल किया, लेकिन वेदांश ने कुछ नहीं कहा। वेदांश की माँ भी उसकी तरफ ही सवालिया नजरों से देख रही थी, लेकिन बिना किसी से कुछ कहे वो सीधा अपने बेडरूम की ओर बढ़ा और कमरे के अंदर आकर बिना कुछ बोले बिस्तर पर लेट गया। अंबिका उसके पीछे पीछे कमरे के अंदर आई और बोली, तुम सुन रहे हो ना वेदांश, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आखिर हुआ क्या है? कहाँ थे तुम? कुछ बताओगे? अंबिका अब तक उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। वेदांश ने एक नज़र उठाकर उसके तरफ देखा, लेकिन वेदांश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद वो बिस्तर पर लेटते ही सो गया। अंबिका वहीं पर साइड में खड़ी बस उसे देखती रही। उसके चेहरे पर गहरा थकान का असर था। अंबिका को समझ नहीं आया था कि वो रात भर कहाँ था, लेकिन फिर भी इतने दिनों में आज पहली बार वेदांश के ऐसे हालात देखकर अंबिका का दिल भर आया। उसने धीरे धीरे वेदांश के जूते उतारे, उसके सामान को साइड में रखा और उसका मोबाइल चेक किया, जो कि स्विच ऑफ हो चुका था। इसलिए अंबिका ने उसका फोन चार्ज पर लगा दिया। उसके मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। सामने बेड पर सोए हुए वेदांश के चेहरे की तरफ देखते हुए अंबिका ने अपने आप से कहा, वो कहाँ गया था? उसने मुझे क्यों कुछ नहीं बताया? क्या वो किसी मुसीबत में है या फिर वो कुछ छिपा रहा है? टू बी कंटिन्यूड। क्या लगता है आप लोगों को, क्या है वेदांश के हालात के पीछे की वजह और क्या छिपा रहा है वो अंबिका से? क्या अंबिका का परेशान होना जायज़ है और अक्षय ने अंबिका का फ़ोन कॉल रिसीव क्यों नहीं किया? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आगे के एपिसोड में।